साथियों, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं जिला समन्वयक दिनकर पातुकर। आज हमारे साथ मोबाइल वाणी पर एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही है जिन्होंने तीसरी सरकार अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरण का कार्य किया है। ऐसे नेहरू युवा केंद्र के पूर्व निदेशक एवं तीसरी सरकार अभियान के प्रणेता डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार नमस्कार
सर जी, जैसा कि आज 25 जनवरी अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इस पर आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे?
राष्ट्रीय मतदाता दिवस निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं वो वहाँ के नागरिकों की सहमति से बना करती हैं या नागरिकों द्वारा ही बनाई जाती है, और इसके लिए एक मतदान की प्रक्रिया होती है। और भारत के संविधान में अब ये तय किया गया है कि 18 साल की जिनकी उम्र हो जाएगी वो मतदाता होंगे, और मतदाता के रूप में वो देश की सरकार बनाएंगे। देश की जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में जो आज की तारीख में तीन सरकारें हैं राज्य व्यवस्था की, एक तो जिसे हम संघ सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार दूसरे शब्दों में, दूसरी राज्य की सरकार है, और तीसरी जो पंचायत सरकार है, पंचायत सरकार और नगर पालिका सरकार जिसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है, तीसरी सरकार है, पहली सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी सेल्फ गवर्नमेंट स्व सरकार जिसको आप कहिए, जहां लोग खुद सरकार होते हैं। तो इन तीनों सरकारों के गठन की जो प्रक्रिया है उस वो मतदाताओं के द्वारा होती है। मतदाता इसके प्रति जागरूक हो, वास्तव में ये चीज तो आजादी के ठीक बाद जब संविधान लागू हुआ और पहला चुनाव हुआ तभी से मतदाताओं की जागरूकता का या मतदाता दिवस जैसे प्रयास शुरू कर दिए जाने चाहिए। ये लोकतांत्रिक शिक्षण का सबसे बड़ा आधार है, और हम आप देख रहे हैं कि उसी के अभाव में चुनाव के समय में क्या हो रहा है, पैसे का और बल का किस तरह से खेल चलता है, और बहुत सारे मतदाता किस तरह से दिग्भ्रमित किए जाते हैं, ये हम हमारे आपके सामने है। मुझे याद है कि ये मतदाता दिवस की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं जरूर श्रोताओं को बताना चाहूंगा। वास्तव में 2008 में दिल्ली का चुनाव हो रहा था और डॉक्टर एस वाई कुरैशी उस समय चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव जो चुनाव आयोग है उसके वो चुनाव आयुक्त बने थे वो, और 2008 में नेहरू युवा केंद्र और एक जन चेतना मंच, इन सब लोगों ने मिल करके दिल्ली के चुनाव में मतदाता जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम किया था, और मावलंकर हाल में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई थी जिसमें हजारों लोग थे। उसमें उसकी अध्यक्षता कर रहे थे एस एन सुब्बा राव जी, उस समय डॉक्टर एस वाई कुरैशी उसमें मुख्य की नोट एड्रेस था डॉक्टर एस वाई कुरैशी का चुनाव आयुक्त का, और उसका शुरुआत कर रहे थे श्री श्री रविशंकर, जिनके नाम से आप सारे लोग परिचित होंगे। ये जन चेतना मंच के उस पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम, उस समय वो एक तरह से मैं ही उसका संस्थापक था जन चेतना मंच का, और नेहरू युवा केंद्र भी उसमें शामिल था बहुत बड़े पैमाने पर, और उसमें राजेंद्र सिंह और पीबी राजगोपाल, ये जो नाम सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सारे लोग देश के उसमें शामिल थे। इवन आज जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल हैं ये भी इत्तेफाक से उसमें शामिल थे उस समय। तब तक ये लोग, मैं ये बात 2008 की कह रहा हूँ, तब तक ये लोग राजनीति में नहीं थे, सामाजिक कार्य में लगे थे, तो सारे लोग उसमें शामिल थे। वहीं पर वो कार्यक्रम शुरू हुआ था, और उसके बाद डॉक्टर कुरैशी के साथ फिर कई बार बातचीत होती रही नेहरू युवा केंद्र के साथ। वो एक बहुत डायनेमिक आईएएस ऑफिसर थे, नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त सचिव भी रहे, उसके पहले भारत सरकार के सेक्रेटरी थे युवा कार्य और खेल मंत्रालय के, नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर जनरल भी रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे, तो उन्हें युवाओं का और इस तरह के कुछ नए प्रयोग का बहुत था। और वो जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने ही तभी से ये चर्चाएं थी कि कैसे एक जागरूकता का, और उन्होंने शुरुआत की चुनाव आयोग के द्वारा। आप याद करिए कि उसके पहले चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता का कोई कार्यक्रम नहीं करता था। तो भारत के चुनाव आयोग में मतदाता जागरूकता एक बहुत बड़ा वो बना, और उसके लिए अलग से पूरा का पूरा वहाँ एक सेक्शन बनाया गया मतदाता जागरूकता का। वहाँ एक डायरेक्टर जनरल की अलग से नियुक्ति की गई, मुझे याद है। और फिर ये उसी में एक मीटिंग में ये तय हुआ था, जो भुवनेश्वर की मीटिंग थी, जहाँ ये तय हुआ था, और डॉक्टर भगवान प्रकाश ने विशेष रूप से इस सुझाव को रखा था, जो कभी NSS के डायरेक्टर होते थे भारत सरकार में। मुझे ये पूरी प्रक्रिया याद है कैसे मतदाता दिवस इस देश में शुरुआत हुई। तो वो मतदाता दिवस की शुरुआत की गई थी। और आज मैं देख रहा हूँ कि आज तो ये इतना बड़ा मूवमेंट बन गया है देश में मतदाता दिवस का, कि हर साल पहले क्या होता था कि कोई इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर, मतदाता जागरूकता होती थी, और मतदाता जागरूकता विशेष करके चुनाव के समय में हुआ करती थी। लेकिन जो नौजवान जो युवा 18 साल का हो जा रहा है, वो मतदाता बने, और उसके लिए मतदाता दिवस का आयोजन करना, ये अपने आप में अद्भुत काम था। और ये हुआ, एक तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे श्रोताओं को ये जानकारी जरूर मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताई लोगों को, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस पूरे प्रक्रिया का, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में जो देश का नागरिक होता है वही मालिक होता है, और नागरिक की दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक तो सरकार बनाने का और दूसरा सरकार चलाने का। वास्तव में अगर हम नागरिकता का थोड़ा सा वो देखें कि नागरिक शब्द पहली बार आया कब पूरे दुनिया में, तो ये जो यूनान के नगर राज्य थे वहां पर सिटीजन शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और जैसे मालूम है कि नगर राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उस समय, जो प्राचीन काल की लोकतांत्रिक व्यवस्था होती थी, ये ईसा से 450 वर्ष पहले की कहानी है। वहां पर सिटीजन उनको कहा जाता था जो शासन संचालन में हिस्सेदारी निभाते थे, भाग लेते थे शासन, और उनकी संख्या 5-7% होती थी यूनान में। जब देश में दुनिया में फ्रांस की राजक्रांति के बाद आधुनिक लोकतंत्र आया, जिस लोकतंत्र की प्रक्रिया में हम आप शामिल है, तब लोगों को नागरिकता दी जाने लगी, और जिनको भी नागरिकता दी जाती थी, माना जाता था कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में ये सब सरकार बनाने का और सरकार चलाने का दोनों जिम्मेदारी निभाएंगे। और जहाँ छोटे राज्य थे वहां तो ऐसे हुए, जहाँ छोटे देशों में जहाँ कम जनसंख्या। भारतवर्ष में भी जब आजादी मिली, और कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद सारे लोगों को नागरिकता प्रदान की गई, और ये नागरिकता कोई बिना भेदभाव की नागरिकता दी गई। और नागरिकता के बाद उस समय यह तय किया गया था कि 21 वर्ष के बाद लोग मतदाता बनेंगे, मतदाता के रूप में वो सरकार बनाने का काम करेंगे। सरकार चलाने का काम कैसे करेंगे, तब तक बहुत सारी चीजें इस देश में शायद थी, क्योंकि शुरू में जब संविधान बन रहा था तब सरकार चलाने की भी प्रक्रिया ही मुख्य थी। गांधी ने जो गांधी के विचारधारा से जो वैकल्पिक संविधान का ड्राफ्ट बना था, उसमें तो शुरू में ही सरकार चलाने की ही पूरी प्रक्रिया थी, और सरकार का मुख्य काम तो गांव के लेवल पर होना था, और गांव की पूरी सरकार जो चलनी थी, गांव पंचायत सरकार उसका नाम दिया गया था, ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत सरकार, जिला पंचायत सरकार, प्रांतीय पंचायत सरकार और अखिल भारतीय पंचायत सरकार, ये 5 पंचायत सरकारें देश में बननी थी राज्य व्यवस्था की, अगर गांधी की बात मानी गई होती तो। तो उसमें तो सारी की सारी मतलब सरकारों के ऊपर जो नियंत्रण था वो एकदम से नीचे के आदमी के ऊपर था, सरकार चलाने में भी उसकी पूरी प्रक्रिया थी। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद तो आज उन्हीं मतदाताओं को, ग्राम सभा सदस्य, सारे मतदाता ग्राम सभा सदस्य होते हैं, तो ग्राम सभा सदस्य के रूप में उन्हें सरकार चलाने का भी पूरा अधिकार मिला हुआ है, और पूरी जिम्मेदारी है और पूरी भागीदारी है। तो इस तरह एक मतदाता, जो नौजवान आज की तारीख में मतदाता बनेंगे, उनको ये जानना चाहिए कि भारत के संविधान ने उनको, कल 26 जनवरी है इसलिए और भी भारत के संविधान की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए, कि वो उन्हें 3 चीजें देता है। जन्म से उन्हें नागरिकता प्रदान करता है, 18 साल के आज अब 18 साल की उम्र में उन्हें मतदाता बनाता है। एक नागरिक के रूप में जब जन्म से उन्हें सारे वो मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, सारी जो सुविधाएं इस देश की हो सकती हैं, उनके विकास के जितने अवसर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये तीनों चीजें संविधान देता है। इसमें प्रतिष्ठा, अवसर और सभी तरह के, सभी कहीं उनके साथ अन्याय ना हो, और फिर सभी तरह की आजादी, स्वतंत्रता वो उन्हें मिलती है जन्म के साथ। और 18 साल में वो मतदाता बनाए जाते हैं। मतदाता बनने के बाद उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इस देश की राज्य व्यवस्था की सरकारों का गठन करें, अर्थात प्रतिनिधि चुनेंगे, वही प्रतिनिधि जाकर पहली और दूसरी सरकार, और गांव में तो सीधे सरकार बनाते हैं वो। गांव में तो जो ग्राम पंचायत सदस्य चुनते हैं वो मंत्री होता है, और जिसको प्रधान या सरपंच चुनते हैं वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा होता है गांव सरकार का। तो यहाँ तो सीधे वो चुन रहे हैं और सीधे उसको चलाने में भी जिम्मेदारी है। वहां वो प्रकारांतर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, सांसद चुनते हैं संसदीय लोकतंत्र में, उन्हीं के बीच से वो बन रहे हैं। तो एक तरह से पूरे के पूरे सरकार के गठन में उनको महत्व मिलता है मत। तो ये जिम्मेदारी है, जब वो मतदाता बनते हैं तो इस जिम्मेदारी को उन्हें समझना होगा। और इतना ही नहीं, भारत का संविधान उन्हें सिर्फ सरकार बनाने की ही जिम्मेदारी नहीं देता, अब तो उन्हें सरकार चलाने की भी जिम्मेदारी दे रहा है 21 साल के बाद, और 18 साल के बाद भी ग्राम सभा में वो निर्णय लेने का अधिकार ले लेते हैं गाँव में। अपने गांव का क्या क्या योजना होगी, गांव के क्या कार्यक्रम होंगे, गांव की पंचायत चलेगी कैसे, गांव के विकास कार्यक्रम कैसे गांव में लागू होंगे, इन सारी चीजों के निर्णय ग्राम सभाओं में हुआ करते हैं। तो मतदाता होते ही उन्हें गांव के बारे में निर्णय लेने का भी अधिकार मिल जाता है। और बहुत सारे राज्यों में जहां नगर पालिका एक्ट को ठीक से अधिनियम में बनाया गया है, वहां तो बूथ लेवल पर क्षेत्रीय समितियां बनाई जाती हैं नगर पालिका क्षेत्र में, और क्षेत्रीय समितियों में सारे मतदाता शामिल किए जाते हैं, और लगभग वही प्रक्रिया होती है जो ग्राम सभा की प्रक्रिया होती है। तो नगर पालिका में भी, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये अवसर अब खुल करके आ गए हैं सारे मतदाताओं को। तो नौजवानों को विशेषकर, उन्हें एक आज से जो भी आज मतदाता बन रहे हैं, वो इस देश के भविष्य को गढ़ने के लिए एक नई जिम्मेदारी से लैस हो रहे हैं, और उतनी ही गंभीरता और समझ के साथ उन्हें मतदाता सिप अपनी लेनी चाहिए, मतदाता का जो रजिस्ट्रेशन।